يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما رضية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الامثال مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر عزیزان محترم عشرہ حسینی عشرہ شجاعت و حماسہ اس کا ایک حصہ ختم ہوا اور کربلا کا دوسرا حصہ اور دوسرا روح 11 محرم سے شروع ہوتا ہے اس لیے کہ کسی بھی واقعے کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر اسباب اور عوامل کو جاننا ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس کے پس منظر کو نہیں جانتے آپ اس واقعے کی اس حادثے کی کا محبوب شناخت سے بے خبر رہیں گے اسی طرح کچھ چیزیں واقعے کو وجود میں لاتی ہیں کچھ چیزیں واقعے کے ساتھ وجود میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں کسی بھی واقعے کو باقی رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور بعض اوقات کسی واقعے کا وقوع پذیر ہونا رونما ہونا صفحہ ہستی پر اس کا رخ پانا اس سے زیادہ اہم اسے باقی رکھنا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک طالب علم محنت کرتا ہے 10 سال 5 سال 6 سال اور ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتا ہے یا پائلٹ بن جاتا ہے اور آخر میں اس کو ایک سند دی جاتی ہے ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے یہ 6 سال بہت اہم ہیں اب 6 سال کی محنت کے بعد اسے جو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے جو سند مل رہی ہے جو گواہی نامہ دیا جا رہا ہے اس کی حفاظت بھی بہت اہم ہے کیوں کیونکہ یہ اس بات کو ثابت کرے گا یہ سرٹیفکیٹ اس سرٹیفکیٹ کی حفاظت کرنا اس بات کو ثابت کرے گا کہ یہ شخص ڈاکٹر یا انجینئر یا پائلٹ ہے توجہ رکھے گا واقعی کربلا کو وجود ملانے والے عوامل تھے واقعی کربلا جب رونما ہو رہا تھا تو بہت سارے عوامل تھے اور واقعی کربلا کو باقی رکھنے والے بہت سارے عوامل تھے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مقدمات ہوتے ہیں عوامل ہوتے ہیں جو کسی واقعے کو وجود میں لاتے ہیں کچھ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں کچھ باقی رکھنے کے لیے ہماری گفتگو جو ان 4 مجالس میں ہے وہ अवामिले बकाए करबला के उन्वान से है कि वो कौन से अवामिल और असबाब थे, वो कौन से एलिमेंट्स और अनासिर थे जिनकी वजह से आज तक वाकए करबला बाकी है और ता कयामत बाकी रहेगी। मिलके दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। और मैंने अर्ज किया कि इसके लिए जिस आय मजीदा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है 13वां पारवा और सूरह रात की 17वीं आयत, अंजला मिनस समाई माअन, अल्लाह ताला ने आसमान से पानी नाजिल किया, फसालत औदियतुन फख्तमरस सैलु ज़बदन राबियन, तो जो नदी नाले होते हैं उनमें अपनी ज़र्फियत के मुताबिक पानी भर जाता है, पानी बहने लगता है। अगर छोटा नाला है तो उसमें पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक होगा, बड़ा नाला है तो बड़ा ज़्यादा पानी होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये गिलास है, गिलास की अपनी कैपेसिटी है, गिलास की अपनी गुंजाइश है, अपनी गुंजाइश के मुताबिक हर ज़र पानी लेगा। अनज़ला मिनस समाई माअन, अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा तो नदी नाले अपनी ज़रूरत के मुताबिक भर के बहने लगे और उस पानी की तुगयानी की वजह से एक झाग उन पर आ जाता है और बज़ाहिर झाग इतना ज़्यादा होता है कि पानी की सतह को ढांप देता है और बाज़ औक़ात उसकी मेकदार भी बहुत ज़्यादा होती है कि आपको पानी की सतह का अंदाज़ा नहीं होता और आप समझते हैं पानी बहुत ऊंचा है, आपको असल असल जो पानी होता है वो नज़र नहीं आ रहा, झाग इतना बढ़ जाता है। तो उसके बाद खुदावंद आलम कहता है और ये झाग जो है ये जेवरात और दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर खुदावंद आलम ने एक कहा आसमान से पानी नाजिल किया और पानी जब बहता है तो उसमें झाग पैदा होता है और फिर फरमाया कि ये जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं ये तो अपनी अपनी ज़िंदगी में भी देखते हो, ठीक है ना। अब बात आएगी तो मैं अर्ज़ करूँगा। उसके बाद कहा अल्लाह ताला ने कदालिका यदरबुल्लाहुल हक्का वल बातिला, अल्लाह ताला इसी तरह हक और बातिल की मिसाल को पेश करता है। देखिए कुरान करीम का मौजज़ा क्या है, कुरान कोई जिन्नाती ज़बान में नाजिल नहीं हुआ है, कुरान इंसानों की ह्यूमन लैंग्वेज में नाजिल हुआ है। अगर आप कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ें या कुरान करीम के सूरों के नाम का तर्जुमा पढ़ें तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि खुदावंद आलम कितनी आसान जबान में इंसानों की जबान में हमसे बात करना चाह रहा है। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर सूरों के नाम देखें, सूरह हम्द है, सूरह तारीफ है, सूरह बकरा है, सूरह गाय है, सूरह नमल है, सूरह नहल है, ठीक है ना, सूरह फील है, सूरह अनकबूत है, ये जानवरों के नाम है, इसी तरह जगहों के नाम है, इसी तरह इंसानों और अम्बिया के नाम है, अलगरज ये कि कुछ इंसानी सिफात के नाम है। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद को जो हमारी हिदायत के लिए है किसी जन्नती जबान में नहीं उतारा कि कोई समझ ना सके, जैसे कि वो जादूगर होते हैं ना अंतर मंतर पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुरान इंसानों की लैंग्वेज है, कुरान इंसान की इंसान साज किताब है, कुरान दर हकीकत इंसानों की तरबियत के लिए, लिहाजा उसको इंसानों की लैंग्वेज में होना चाहिए। उसकी बहुत ही सादी सी मिसाल अर्ज करूँ, स्कूल में लेवल्स होते हैं, ये प्रेप लेवल है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, हर लेवल की हर एजुकेशन लेवल की क्या लैंग्वेज अलग होती है। ज़रूरी नहीं कि जो मसलन बहुत ही इब्तदाई क्लास में बच्चा खेल कूद से सीख रहा है उसको अब मैट्रिक के लेवल की बात करें, नहीं मुमकिन नहीं है, हर लेवल के मुताबिक एक लैंग्वेज है। कुरान करीम का मौजज़ा यह है कि कुरान की लैंग्वेज एक है, तवज्जो रखिएगा लैंग्वेज एक है, लेकिन यह लैंग्वेज हर जमाने के हर सतह के इंसान को हकीकत समझाने के लिए काफ़ी है। मिलके दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। अब खुदा ने बहुत ही ऑब्जर्वेशनल एग्जाम्पल दी है, बहुत ही मुशाहिदाती मिसाल, जिसे आप रोज़ाना मसलन अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। बहुत ही सादी सी मिसाल याद करूँ, शायद मुनासिब ना हो मेंबर के लिहाज से, इंसान नहाता है, हमाम में जाता है तो शैम्पू लगाता है, शैम्पू से झाग पैदा होता है, बातों का इतना झाग पैदा होता है इंसान परेशान हो जाता है, थोड़ी देर में अगर आप खड़े रहें तो क्या है वो झाग ख़त्म हो जाएगा। झाग की हकीकत नहीं है, लगता ज़्यादा है उसका, उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा लगती है लेकिन झाग की हकीकत नहीं है।
बहुत अगर ये तो रोज़मर्रा की मिसालें ऐसी हैं, पानी में देखते हो पानी में झाग पैदा होता है, कुछ अरसे बाद खत्म हो जाता है। कदालिक यदरिबुल्लाहुल हक वल बातिल, खुदा इन्हीं चीज़ों से तुम्हें हक व बातिल दिखाना चाहता है, खुदा इन्हीं चीज़ों से तुम्हें अच्छाई और बुराई को दिखाना चाहता है। और फिर फरमाया कि हमने हक व बातिल को इस इन एग्जाम्पल्स के जरिए से फरमाया। हाँ, वो पानी जिसका हमने तस्करा किया कि जो पानी की सरफेस पर, पानी की सतह पे आ जाता है, फयदहबो जफाअन, फयदहबो जफाअन, वो पानी कि जिस पर झाग आ जाता है वो चला जाता है। ये लेकिन चला कैसे जाता है? आम हालत में चला जाता है? नहीं, खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। उसकी अपनी हकीकत, जो उसका मुलायमपना होता है झाग का, आप देखिए, आप किसी पानी में झाग पैदा कीजिए, हवा में रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, कुछ ही देर में जो है वो अकड़ना और सिकुड़ना शुरू होगा, और सिकुड़ते सिकुड़ते अपना उसकी जिसामत जो नम होने लगती है, उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जैसे था ही नहीं। ये बहुत ही सादा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई मैदान में जाने की जरूरत नहीं है। फ़ामज़रदो फ़यदहबो जुफान, ये जो झाग है ये क्या है? ये चला जाता है, लेकिन ऐसे नहीं चला जाता, खुश्क हो जाता है। वो जो देखने में ज्यादा लग रहा था, जिसकी क्वांटिटी बहुत लग रही थी, जिसकी वजह से पानी की सरफेस और सतह नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हकीकत का अंदाजा नहीं हो रहा था, क्या हुआ? वो चला गया। और कैसे चला गया? खुश्क होकर चला गया, यानी अपनी हकीकत को खत्म करके, नाबूद करके चला गया। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वो अम्मा यन्फउन्नास, हाँ, वो चीज़ जो लोगों को फ़ायदा देने वाली है, लोगों के फ़ायदे के लिए है, लोगों की बेहतरी के लिए है, फ़यम कसोफिल, जो असल चीज़ है, जो फ़ायदेमंद है, वो ज़मीन पर बाकी रह जाती है। उसके बाद फरमाया कदा, खुदा इसी तरह हक व बातिल को समझाने के लिए तुम्हें मिसाल पेश करता है। मिल दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। अगर थोड़ा सा आपके दुरूद का जानदार सहारा अगर मुझे मिल जाएगा तो मुझे भी टॉनिक मिल जाएगा। मिल दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। माशाल्लाह, क्योंकि फरिश्ते आते हैं मजलिस में। हदीस में है कि जहाँ पर भी मौलाए कायनात का तस्करा किया जाता है, जहाँ पर भी आले मोहम्मद का तस्करा किया जाता है, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को, अपनी महफिलों को, अपनी नशस्तो बरख़ास्त को, अपनी सिटिंग को ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब से ज़ीनत दो। ये हदीस रसूल है। अब जहाँ पर जैसे ही आप ज़िक्र आले मोहम्मद, ज़िक्र मौलाए कायनात करते हैं, फरिश्ते दर हकीकत नाज़िल होते हैं और यहाँ से एक खुशबू लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। बेहतरीन खुशबू होती है, वो खुशबू आसमान पे नहीं मिलती, वो खुशबू वही मिलती है यहाँ जिक्र अली ये अबी तालिब होता है। लिहाजा अब क्या हुआ, जैसे ही आपने जिक्र अली तालिब, अली अली ये अबी तालिब किया, आसमान से फरिश्ते नाज़िल होते हैं। इस फिजा से जिसे मैं और आप, नॉर्मल फिजा है हमारे लिए, लेकिन फरिश्तों की जो बीनी होती है ना जी, वो बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। वो इस रूहानी खुशबू को जो जिक्र अली से, जिक्र आले मोहम्मद से उठती है, उसे कैच करते हैं, वो फौरन आसमान से नाजिल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मकनातीस, मकनातीस क्या होता है, वो चीज़ को जो दूसरों को खींचने की सलाहियत रखती है, हर चीज़ को नहीं खींचता मकनातीस, मखसूस चीज़ों को खींचेगा तब वो जो रखेगा, जैसे ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड में वो चीज़ कोई लोहा कोई धात आ गया, उसने अपनी तरफ खींच लिया। इधर आप जमीन पर हैं, फरिश्ते अर्श पर हैं, लेकिन जैसे ही आपने जिक्र अली किया, फरिश्ते मकनातीस की सलाहियत की माने जिक्र अली उनको अपनी तरफ खींच लेता है। अब यहां से जब जाते हैं वो खुशबू लेकर, ठीक, तो रास्ते में मलाइका पूछते कहाँ से आ रहे हो, कहा कि हम जमीन से आ रहे हैं, कहा कि ये खुशबू जो तुम्हारे पास है, जैसे अपनी जबान में कहो ये परफ्यूम जो तुमने लगाया है, ये तो यहाँ नहीं मिलता, ये कहाँ मिलता है? जो कहते हैं ये वहाँ मिलता है जहाँ जिक्र अली ये अपने अली तालिब होता है। मिल के दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर वो कहते हैं अच्छा हमें भी वहां ले चलो, हम चाहते हैं ये खुशबू हम भी हासिल करें। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, फरिश्ते उलूवियत पे रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं, अर्श इलाही पे रहते हैं। कोई ऊंचा रुतबा रुतबे वाला नीचे रुतबे की तरफ आना पसंद नहीं करता, लेकिन फरिश्ते उस बुलंदी को छोड़कर उस बस्ती जमीन की तरफ आते हैं जहां जिक्र अली जिब्न अबी तालिब होता है। तो फरिश्ते क्या कहते हैं जो खुशबू लेके जा रहे होते हैं, कहते देखो वो मजलिस खत्म हो गई, महफिल के दरवाजा बंद कर दिया, फर्श आधा लपेट दिया, कहा कि हमें फिर पता बता दो, हम उसके दरो दीवार से वो खुशबू हासिल कर लेंगे। तवज्जो किया तो आले मोहम्मद का जिक्र, अब ये सलवात आप देखते अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद या मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजल फरजहुम, ये दर हकीकत अली और औलाद अली का तस्करा है। तो इस औलाद अली के तस्करे को बुलंदर भेजना चाहिए, मिलकर दुरूद भेजें अस्मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरा सब बार बार कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी मुझे, या हर थोड़ी देर लुकमा देना पड़ेगा बहरा। और बात आ गई है तो दुरूद के दो फायदे और सुन लें। सरकार दो जहां ने फरमाया कि जो मुझ पर मेरी आल पर कामिल दुरूद भेजता, कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम, कुछ लोग हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिही ख़त्म कर देते हैं। जो वालिही क्यों ख़त्म कर देते हैं भाई से पूछा जाए, जबकि रसूल अल्लाह ने खुद सही बुखारी में फरमाया है, अहले सुन्नत की किताबों में है कि मुझ पर कामिल सलवात भेजो। कामिल सलवात भेजो यानी मुकम्मल, मुझ पर भी और मेरे आल पर भी। अब सरकार फरमाते हैं जो मुझ पर कामिल सलवात भेजता है मुझ पर और मेरी आल पर, उससे मुनाफिकत खत्म हो जाती है, मुनाफिक नहीं रहता। और फिर दूसरा फायदा रोज़े कयामत होगा कि सरकार फरमाते हैं कि जब आमाल तोले जा रहे होंगे और किसी मोमिन के आमाल में कमी होगी तो फिर मैं दुनिया से उसकी वो सलवातें लेकर जो दुनिया में भेजा करता था उसके नाम आमाल में रख दूंगा, तो उसका नाम आमाल का पदड़ा भारी हो जाएगा। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो गुफ्तगू हो रही थी कि अवामिल बकाए का सूरह राज आयत नंबर 17, मैंने बहुत आसानी के साथ इसका तर्जुमा खोल दिया, इससे ज़्यादा इसमें वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। पानी की सरफेस पर झाग आ जाता है, बाद अवत झाग इतना ज़्यादा होता है कि अंदाज़ा नहीं होता पानी कहाँ है झाग कितना है, लेकिन खुदा कहता है कुछ ही अर्से में झाग जो है थोड़े अर्से रहेगा, कुछ टाइम रहेगा उसमें ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म ही ऐसे होगा इसकी हकीकत ख़त्म हो जाएगी, गोया कोई कभी था ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं था। और फिर खुदा ने कहा हाँ जो चीज़ तुम्हारे फ़ायदे के लिए बाकी है वो हमेशा रहेगी, वो ज़मीन पर बाकी रहेगी। और अल्लाह ताला इसी तरह मिसाल बयान करता है, वाकई कर्म वाला में दो चीज़ें हमें नज़र, एक हक और एक बातिल। लेकिन वाकई कर्म वाला में बातिल का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है, बड़ा नज़र आता है, ह्यूज नज़र आता है, बहुत बड़े कैनवस पे नज़र आता है। मिसाल के तौर पर प्रोजेक्टर होता है ना, आप दीवार पे चलाएंगे वो दीवार के कैपेसिटी के मुताबिक इमेज देगा। आप तीन मंजिला इमारत बना लीजिए सिनेमा के स्कोप पे चले जाइए वो उतना बड़ा इमेज बना के देगा। करवाला में बातिल का जो इमेज था, तवज्जो रखिएगा, बातिल की जो फैक्ट्री थी, बातिल की जो मशीनरी थी, वो बातिल के इमेज को बहुत बड़ा बना के पेश कर रही थी, बहुत बड़ा के बना के भेज। जैसे कि आज मिसाल के तौर पर बहुत सारी ताकतें मिलकर मुसलमानों के दुश्मनों को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पेश कर रही हैं, मतलब यही मसला कश्मीर का उठा लीजिए, फलस्तीन का उठा लीजिए, इसराइल को बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। तवज्जो रखिएगा, कश्मीर के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हो रहा है मोदी सरकार को इंडिया को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। खुदा कहता है देखो जो हकीकत बीन होता है, जो मुजाहिद होता है, जो खुदा वाला होता है, जिसके पास नूर मोहम्मद आले मोहम्मद होता है, वो बातिल से कभी नहीं घबराता, वो बातिल से कभी खौफजा नहीं होता। मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, मोमिन क्या है बेतेग भी लड़ जाएगा, मोमिन है वो कुव्वत ईमानी के भरोसे पर। तो करबला में हमें क्या नज़र आता है, करबला में हमें बादल बहुत ज़्यादा नज़र आता है। 18,000 या 33,000 का लश्कर भी लिखा गया है कि इतने अफराद मौजूद थे, क्या जंगी साधु सामान, क्या रोग, क्या दबदबा। और फिर ये तो जंगी साधु सामान था, मीडिया यजीदियत के साथ था, मेंबर यजीद के साथ था। कैसे था? यानी इमाम हुसैन नवास रसूल जवानाने जन्नत के सरदार को मीडिया के जरिए से क्या बना के पेश किया जा रहा है, ये बागी है, ये खुरूज करने वाला है, इसने यजीदी वक्त के खिलाफ कयाम किया है, ये मीडिया। आज मीडिया मसलन टेलीविजन है, न्यूज़पेपर्स है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, उस जमाने मेंबर होता था मीडिया। मौलाए कायनात जो रूह नमाज है, जो रूह दीन है, जो विनायत रखता है दर हकीकत अल्लाह के नूर से, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर से, जिसकी खिलकत हुई है, जब शहीद होते हैं तो मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया क्या कर रहा है कि अली का मस्जिद में क्या काम। बस तसव्वुर कर सकते हैं, जो दीन को बचाने वाला है, दीन को फैलाने वाला है, उसी के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा। तवज्जो रखिएगा, यानी तसव्वुर नहीं कर सकते आप। थोड़ी देर के लिए घर जाके सोचिएगा कि मौला अली के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा हुआ है। और फिर वही प्रोपेगेंडा उसी अमीर शाम के बेटे ने जो है मिसाल के तौर पर करबला में किया। पूरी मशीनरी लगी हुई ममालिक इस्लामी में, इस्लामी शहरों में, और जहाँ जहाँ इमाम हुसैन का काबला जा रहा है, ये मीडिया आगे आगे है। जैर खलीद मुल्लाओं को रखा जाता है जो फतवे दे रहे हैं, जो नमाज जुमा में जो बयान कर रहे हैं। हुसैन को खुदा ने जलील और रुस्वा किया, नाऊज़ बिल्लाह। ये बागी था, ये खुरूज करने वाला था, इसने बादशाह के वक्त के खिलाफ कयाम किया। तवज्जो रखिएगा, तो बातिल का जो इमेज है वो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि देखो बातिल को मत देखो, उसके ह्यूज अमाउंट को मत देखो, उसकी शान और शौकत को मत देखो। जो खुदा वाला होता है, जो नूर मोहम्मद वाले मोहम्मद रखने वाला होता है, वो कभी बातिल से नहीं घबराता। और ये मिसाल आज तक कायम व दायम है कि अगर आज बड़ी ताकतों को कोई शिकस्त दे रहा है, अगर आज कोई इसराइल को शिकस्त दे रहा है, अगर आज कोई इन नफरतों भरे जज्बात को शिकस्त दे रहा है, तो वो मोहम्मद आले मोहम्मद और दीन की मोहब्बत के जज्बात हैं। मिलकर दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। अगर मैं आज करबला की एक छोटी सी मिसाल, बहुत छोटी सी मिसाल पेश करना चाहूँ, मुमकिन है आप मेरी बात से इख्तलाफ ना करें, मौलाना आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। मसला यह है कि हमारे पास और कोई मिसाल है नहीं ऐसी कि जिसको हम आपको बादल भी कहें। आज हिजबुल्लाह लुबनान ने करबला की तासीओ पैरवी करते हुए एक छोटे से गिरोह ने कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन, ये खुदावंद आलम की आयत है जो कुरान में नाज़िल हुई है कि कितने ही गिरोह कलील ऐसे हैं जो गिरोह कसीर पर अल्लाह की मदद से गालिब आ जाते हैं। अगर करबला जो सरे मश्क है, जो एग्जांपल है, जो सर का ताज है कि वहां हुसैन का लाशत पामाल होता है, लेकिन तारीख में यजीदियत पामाल हो जाती है, तो उसी करबला का छोटा सा उनसुर और अस हमें हिजबुल्लाह लुबनान में नजर आता है, जो एक बहुत बड़ी फौज के सामने कद अलम बुलंद करता है और उसको शिकस्त से दोचार करता है। यही है कि जो अली वाले हैं वही दर हकीकत हक बातिल को आया करने वाले हैं। मुमकिन नहीं है कि जिन्होंने कभी गदीर को कबूल न किया हो, मुमकिन नहीं है जिन्होंने विलायत हो इमामत के निजाम को कबूल किया, वो दुनिया में कोई लीडिंग रोल अदा कर सके। दुनिया में अगर कोई लीडिंग रोल अदा कर सकता है, रहनुमा बन सकता है, कायद बन सकता है, तो या वो नस्ल सादात ज़हरा से होगा, या फिर मोहम्मद आले मोहम्मद से पैरवी करने वाला और की मवद्दत मोहब्बत रखने वाला। मुमकिन नहीं है, क्यों? इसलिए कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले ही दर हकीकत हको अदल व इंसाफ के हामिल होते हैं, जिसको मौलाए कायनात ने फरमाया ला यहमिलु हादल अलम इल्ला सबर वल बसर। इस अलम हिदायत को मौलाए कायनात फरमाते हैं, अलम हिदायत को, अलम रहनुमाई को, लीडिंग पावर को अगर कोई उठाना चाहता है तो दो ताकतें उसके पास होनी चाहिए, दो मजबूत उसके हाथ होने चाहिए, एक बसीरत और एक सबर, जो हमें करबला से मिलता है। बिल्कुल दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हक व बातिल को इस निगाह से देखें, मुमकिन है कि हमारे जमाने में बहुत सारी मिसालें हों,
जिसको हम समझ रहे हों, बाज़ वक़्त हम उससे बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बहुत ही सादी सी मिसाल मैं अर्ज़ करूँ, आपकी ज़िंदगी में मैं आपसे कहूँ कितनी ऐसी मुश्किलात आई थी जिन्होंने आपको ज़मीन गिर कर दी, आपकी कमर तोड़ दी। शायद दो तीन चार ऐसी मुश्किलात होंगी आप पसपाई का शिकार हो गए, आपने हिम्मत है मैं नहीं कर सकता, हार गया बस, हिम्मत नहीं मुझे। दो तीन मुश्किलात ऐसी होंगी पूरी ज़िंदगी में जिसने आपकी कमर हिम्मत तोड़ दी हो, लेकिन क्या हुआ, आपने फिर कहीं ना कहीं किसी के कहने पर कोई रहनुमा, कोई दलील बना, फकायद बना, कोई इसने एडवाइस किया आपको, आप खड़े हुए और आज वो वक्त गुजर गया। अब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको, अगर उस वक्त में अपने आप को जाके देखें, आप शिकस्त खोर्दा नजर आएंगे, टूटे हुए नजर आएंगे, शिकस्त तस्लीम कर चुके होंगे। लेकिन आज अगर पीछे मुड़ के 20 साल 25 साल 40 साल पहले देखेंगे तो आपको हंसी आएगी अपने ही किरदार पर, अपने ही करेक्टर पर, अपने ही जज्बात पर, अपने ही आंसुओं पर। क्यों? कि मैं कैसे बचकाना हरकतें कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि इसके बाद एक और मरहला आने वाला है जो मेरी गुशाइश का आसानी का है, मेरी ज़िंदगी रवा हो जाएगी, अपने ट्रैक पे जारी असाली हो जाएगी। याद रखिएगा ज़िंदगी मुश्किलात आती हैं, लेकिन ज़िंदगी से मुश्किलात, ज़िंदगी की मुश्किलात को फेस करना चाहिए। मुश्किलात मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, एक तालिबे इल्म मसलन एक पेपर में रह जाता है पास नहीं होता, वो जो है बकिया 9 पेपर्स में जो पास हुआ है वो एक तरफ होता है, इसकी एक पेपर की शिकस्त और मार्क्स का ना आना ये एक तरफ होता है। ये आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात एक चीज़ जुज़ई पार्शली आपकी शिकस्त और डिफीट खाना क्या है, आपकी पूरी कामयाबी पर असरअंदाज होती है, पूरी कामयाबी पर। और शैतान यही बातिल यही चाहता है कि मोमिन की ज़िंदगी की, ज़िंदगी के एक मामूली से हिस्से की शिकस्त को उसकी पूरी कामयाबी पर हावी कर दे। और यही है कि शैतान हमेशा यही चाहता है कि एक गुनाह की वजह से वो सारी अच्छाइयाँ जो आप सुबह से मसलन शाम तक करते रहे, शाम को एक ख़ता हो गई, आंखें बहक गई, कान बहक गए, ज़बान लड़क गई, हाथ पैर में कोई काम ऐसा कर दिया जो गुनाह के ज़ुमरे में आता है, अब ये जो नौजवान बैठ गया मुझसे अच्छा काम नहीं होते, मैं अच्छा नहीं बन सकता, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। शैतान इस एक गुनाह को इतना बढ़ा देता है कि वो दिन भर की अच्छाइयों पर हावी हो जाता है। तो ये हिस्सा है दुश्मन की प्लानिंग का, बादल की प्लानिंग का, कि वो इस तरीके से करता है। तो हमारा मौजू क्या है, हमारा मौजू है अवामिल बकाए करबला। वो कौन से अवामिल थे, वो कौन से एलिमेंट्स थे, वो कौन से असबाब थे जिनकी वजह से करबला आज कर पाए। आपने अपने बचपन में अपनी वालदा से बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, जिन्हों की, परियों की, कोकाब की, कुलिया सब जाने इस कदम की, शायद कुछ और किस्म की कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन उन कहानियों को सुनने के बाद कोई बड़ापन महसूस नहीं होता। हाँ उस ज़माने में जब छोटे बच्चे थे कहते थे अच्छा ये पहाड़ का दरवाज़ा कैसे खुल गया, समसम से खुल जाता है, ये परियां कैसे आ जाती हैं, ये जिन कैसे परवास करते हैं, छोटे बच्चे होते ना पूछते, हमें बताया जाता है मतलब कहानी सुनाई जाती है, कहानी सुनाना बुरा नहीं है, लेकिन जो आप सुना रहे हैं वो बच्चे के जहन में राज़ों को पुख्ता हो रहा है। और इसी को मौलाए कायनात ने कहा था के कल हरस कल अर्द खालिया, बच्चे का जहन बिल्कुल खाली ज़मीन की मानिंद होता है, उसमें जो डालूँ उल्कियत जो डालोगे उसको कबूल कर लेगा। आज जो बच्चे कुल जहन हैं, परेशान हैं, मुतज़ज़िद हैं, कंसंट्रेशन नहीं होती, पढ़ने में दिल नहीं लगता, माँ बाप का एहतराम नहीं करते, दीन से बह रहे हैं, उसकी वजह है, उसकी एक वजह यह है कि जो हम उनको फीड कर रहे होते हैं, जो उनको दिखा रहे होते हैं, जो सुना रहे होते हैं, हमारा अपना बिहेवियर उनको जो सुना रहा होता है, कभी आंखें, कभी मुक्का, कभी थप्पड़, कभी डांट, कभी डबट, कभी इंसल्ट, कभी तौहीद, कभी आनत, कभी मनफी अल्फाज, ये सब क्या बच्चे पर सर उसकी शख्सियत को क्या तोड़ रहे हैं। जैसे ऐसे ही है जिसको मैंने कहा था बाज़ औक़ात हम समझाना चाह रहे होते हैं लेकिन समझाने के नाम उसकी शख्सियत को बिल्कुल चकनाचूर कर देते हैं। जैसे शीशे का वो ये ग्लास है बड़ा खूबसूरत है, आप इसको क्या हथौड़ा मारना शुरू करें क्या होगा, ये चकना चूर हो जाएगा, बिल्कुल पीसेज में डिवाइड हो जाएगा। उसकी मैंने मिसाल दी थी कि जैसे कील होती है, आप कील दीवार में गाड़ रहे हैं, हथौड़ा लिया आपने मारने शुरू की, कील एक इंच की है, एक हिस्सा गया, दो हिस्सा गया, हाफ कील गए दीवार में गाड़ गई, अब आप ठोक रहे हैं ठोक रहे हैं ठोक रहे हैं, अब कील आगे नहीं जाएगी, जहन में क्या आता है कोई आगे रुकावट है जिसकी वजह से कील नहीं जा रही,
लेकिन आपने उसको ख्याल नहीं कि आपने हथौड़ा मारना शुरू किया, क्या होगा? कील टेढ़ी हो जाएगी। उसका जो वजूद का फलसफा है ना, इस्तेमाल करने का, उसे यूज़ करने, ख़त्म हो जाए, टेढ़ी हो जाएगी, फिर वो बेकार हो जाएगी, निकाल के फेंक देंगे। बास औकात हम अपने बच्चों को समझाना चाह रहे होते हैं जी, हथौड़ा लिए मारना शुरू किया, कील ठोक रहे ठोक रहे ठोक रहे, वो बच्चे के अपने एक जहनीत, एक मैंटेलिटी, एक लेवल है उसका, उस लेवल के मुताबिक नहीं समझाएंगे क्या होगा। अब मजीद हमने अगर हथौड़ा मारना शुरू किया, उसके दिमाग में जो कील आप एक अच्छे पर्पज़ के लिए ठोकना चाह रहे थे, वो टेढ़ी हो जाएगी, बच्चा भी आपसे बागी हो जाएगा और आपका मैथड भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा मजलिस को रमा करने के लिए कुछ तरबियत नुकात भी अर्ज किए जाए। मौजू हमारा अमामले बकाए करबला है, करबला क्यों बाकी? यहाँ से बात निकली थी कि हम कहानियाँ सुनते थे, लेकिन कहानियों का कोई अच्छा इमेज हमारे जहन में नहीं है। हम बहुत मुतासर नहीं है कोकाफ के जिनसे जो कालीन पे बैठ के उड़ता है। मुमकिन है कि हॉलीवुड बॉलीवुड की कोई फिल्म आपने देख ली हो, मैट्रिक्स और इस किस्म की चीज़ें आपको दिखाई गई हो, बहुत अनहोनी कि एक बहुत बड़ी मलका है, वह स्पाइडरमैन है या वो है, वो इस किस्म की चीज़ें दिखा रहे हैं आपको ताकि आपके नज़रिया इमाम मेहदी को कमज़ोर कर सके। मेरा मौजू ये नहीं है, सिर्फ इशारा करता हूँ, बताऊँ फिर कभी मौका मिला इन्हीं मजालिस के दौरान तो अर्ज करूँगा कि हम मरूब हो जाते हैं उसको जब इमेजिनेशन के ज़रिए से देखते हैं और अपने सामने मुजस्म पाल मरूब होते हैं। लेकिन बचपन की किस्से कहानी आपने सुने, मैं कोई ज़्यादा मुतासर नहीं होऊंगा। वो जो खुलजा समसम कह रहा है, वो जादू की छड़ी है, ये सारी चीज़ें मुतासर नहीं होंगा। किस चीज़ से मुतासर होऊंगा मैं? इंसान किस चीज़ से मुतासर होगा? मिसाल के तौर पर एक पौधा है, आपने घर में क्यारी बनाई है, आप उसे पानी देना चाहते हैं। आपने कहा जनाब इसमें मैं चाय का पानी देता हूँ, चाय का पानी देंगे, क्या वो कुछ दिन बाद पौधा मुरझा जाएगा? आपने कहा चले जी शैम्पू का पानी देता हूँ, चूँकि शैम्पू से कपड़े साफ़ हो जाते हैं, लिहाजा ये पौधा भी साफ़ सुथरा हो जाएगा, शैम्पू का पानी देंगे, साबुन का पानी देंगे। जवाब नहीं आएगा। क्यों? उसको खालिस पानी की ज़रूरत है, इसको प्योर पानी की ज़रूरत है, उसमें कोई खोट नहीं होना, मिलावट मजाक नहीं होना चाहिए पानी। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा कि हमें दर हकीकत उस प्योरिटी को हासिल करना है, उस शफाफियत को हासिल करना है। वो चीज़ असर करेगी जो शफाफ होगी, वो चीज़ असर करेगी जो जिसमें खोट नहीं होगा, जिसमें झूठ नहीं होगा, जिसमें मिलावट नहीं होगी, और वो वही है जो दीन हक है, जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि ये दीन हक अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। और ये नाजिल किया है तो फिर ये जब तक खालिस रहेगा, जब तक प्योर रहेगा, ये फायदा पहुंचाता रहेगा। लेकिन जैसे इसमें मिलावटें शुरू हो जाएंगी, ये अपनी खालिसियत को खो देगा और इसके वजूद से जो तुम बरकत हासिल कर सकते वो हासिल नहीं करोगे। बिल्कुल दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर आपसे पूछूं कि आपने बचपन में जो कहानियां सुनी थी, कोई एक सुनाइए, शायद आपको पूरी याद भी ना हो। हम अपनी जिंदगी में बहुत से किस्से कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिल्मों में देखते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिनका असर हमारी ज़ात पर गहरा होता है। बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं, बाज़ कहानियां और बाज़ फिल्में ऐसी होती हैं कि आप देखने बहुत मुतासर हैं, कमरे से बाहर निकले उसका असर ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही होता है। या दो दिन असर रहा, चार दिन असर रहा, चार दिन के बाद फिर गायब हो गया। रास्ते में कोई एक्सीडेंट देखा, जनाब तेज़ रफ्तारी की वजह से मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। अब ये नौजवान क्या दो दिन तक जो बहुत एहतियात से गाड़ी चलाएगा, मोटरसाइकिल चलाएगा, तीसरे दिन फिर अपनी हालत पे आ जाएगा। या कोई कार एक्सीडेंट खुदा न खासा किसी ने देख लिया, चार दिन वो सुकून से चलाएगा गाड़ी, पाँचवें दिन फिर वही अपनी हालत पे आ जाएगा। तो वाकियात, खातिरात, एग्जाम्पल्स, फिल्में, क्लिप्स, बातें, बयानात, मजालिस, बुक्स, रीडिंग, लिसनिंग, ये सब चीज़ें जो हैं हम पे असरअंदाज होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनका असर देर पा होता है। मसलन बचपन में कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसी बात, कोई टीचर ने कोई बात की, किसी मजलिस में कोई नुकसान सुनाओ, वो आपके जहन पे नक्श हो जाएगा, जम जाएगा। और इसीलिए कहा कि बचपन ही में जो इल्म दिया जाता है वो ऐसे ही जैसे पत्थर पर लगी, पत्थर पर लगी, पत्थर पर लगी, बच्चों को कैसे समझाऊं? आपने अभी दीवार पर सीमेंट किया है, सीमेंट गीली है, तर है, आप इस पर जो नाशो निगार बना देंगे ये सीमेंट सूख जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए महसूस रह जाएगा। बचपन का इल्म
क्या है, तरबियत
कहाँ से बचपन से, और बड़े होकर इल्म हासिल करना ऐसा है जैसे पानी पर नक्शो निगार बनाना। पानी का नक्शो निगार बना सकते हैं आप, जैसी लकीर खींचेंगे पानी फिर मिल जाएगा, फिर दोबारा लकीर खींचेंगे कुछ बनाने जाके पानी मिल जाएगा। बड़े होकर इल्म हासिल करो, पुख्ता हो गया, कंप्लीट हो गई तरबियत उसकी, लेकिन मायूस ये होना चाहिए कि हमें कह जाना मौलाना आपने तो हमारे दरवाजे पर दे दी, नहीं बाकी रहता है। लेकिन वो कम आपका जो असर बच्चे पे होगा वो मुझ और आप पे नहीं होगा। अब मुझसे कहा जाए मौलाना आप अपनी हैबिट तब्दील कर लें, अपनी आदत तब्दील करें, थोड़ी बहुत तो कोशिश करूँगा, दो चार दिन जी जोर लगा के जबरदस्ती करके जा रहा हूँ उसको मसला के जवाब दूंगा आपको, लेकिन क्या है पाँचवें छठे दिन फिर अपने वापस जाकर पे आ जाऊँगा, क्योंकि मैं चेंज नहीं हो सकता, पुख्ता हो गया हूँ मैं, सही है ना। लेकिन बच्चा क्या है, बच्चे को आप चेंज कर सकते हैं। तो वाकयात हमने सुने हैं, वो वाकयात जो हक व हकीकत रखते हैं, वो वाकयात जो दर हकीकत खुदाई रंग रखते हैं, खुदाई पहलू रखते हैं, उनका असर बहुत ज़्यादा है। दुनिया में बहुत सारा जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादा सितम हुआ है, खून बहा है, बर्बरियत हुई है, खून आशामी हुई है, लेकिन वाकई कर्बला में जो मजलूमियत, तकद्दुस, एहतराम, खुदाई रंग जो मौजूद है वो दूसरे वाकयात में है। शायद कर्बला के अमाउंट से ज्यादा किसी मुल्क में कत्ल गारत हुआ हो, मसलन पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो 2 लाख या इससे ज्यादा अफराद जो है वो कत्ल किए गए, माएँ बहनें कत्ल की गई। अगर अमाउंट के लिहाज से दे, फिगर के लिहाज से देखा जाए, कश्मीर में जुल्म सितम, बहरीन में मसलन सऊदी अरब जुल्म कर रहा है या यमन में, अमाउंट के लिहाज से देखेंगे जुल्म सितम ज्यादा है, लेकिन कर्बला में अमाउंट के लिहाज से जुल्म सितम की क्वांटिटी कम है, यानी फिगर कम है अफराद की। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो कर्बला को दुनिया के तमाम वाकया से मुमताज व मुनफरिद करार देती है, ये सवाल पूछना चाहिए हमें। तवज्जो रखिएगा, ये सवाल पूछे क्यों कर्बला बाकी है। अगर वजन के लिहाज से देखें, जैसे जाहरी वजन के लिहाज से वजन हम देखेंगे कि दुश्मन कितने थे, मसलन वहाँ 18,000 या 33,000 थे, आज लाखों में है। यहाँ जो मकतूल हैं जिनको कत्ल किया गया कर्बला में कितने थे, 72 थे, यहाँ जनाब हजारों में है। वहाँ पर मसलन सादे हथियारों से कत्ल किया गया, तीर से, भाले से, लेजे से, खंजर से, ठीक है ना। और आज जो है मिसाल के तौर पर जदीद हथियारों से कत्ल किया जा रहा है, जो बाकी बच गए थे उनको हथकड़ियों और पेड़ियों में डालकर जो है उनको असीर बनाया गया। आज जो है नित नए तरीक़ों के जरिए से अबू गरैब जो जिंदान जिसको अमरीका ने बनाया और मुसलमानों को वहाँ रखा गया, और इसी जैसे बहुत से अजियत खाने उन्होंने टॉर्चर सेल बनाए पूरी दुनिया में, उनकी तादाद आप देखें, और फिर वहाँ जो वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं अजियत देने के वो देखें, तो आज के इन अजियत खानों के जो तरीक़े हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। लेकिन क्या वजह है कि वाकई कर्बला के कद के बराबर कोई वाकया अपना सर बुलंद नहीं कर सका, क्या वजह है कि वो तकद्दुस जो कर्बला में था वो तकद्दुस हमें दुनिया की किसी वाकये में नजर नहीं आता। मजलूमियत है इसमें कोई शक नहीं है, कश्मीर में जो हमारे माए बहनें पर जुल्म हो रहा है, हमारे नौजवान जुल्म हो रहा है, मजलूम हैं हम उनके साथ हैं, बहरीन में जुल्म हो रहा है हम उनके साथ हैं, आयतुल्लाह इब्राहिम ज़द्दकी को कैद किया जा चुका है, 1300 दिन हो रहे हैं, हम उनके मजलूम हैं साथ हैं, तवज्जो रखिएगा। यमन में जुल्म हो रहा है हम उनके साथ हैं, न जाने कहाँ कहाँ जुल्म नहीं हो रहा। खुद आप देखें कि आपके शहर क्वेटा मुख्तलिफ वाकयात की आमाजगा बना हुआ है, ये जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन मजलूम है। लेकिन अभी आप देखेंगे मतलब काबुल में जो शादी की तकरीब थी उसको अजा में तब्दील कर दिया, इज्तिमाई शादी की, जुल्म है, नहीं कह रहा जुल्म नहीं, मजलूम हैं लोग, और मजलूम सिर्फ मुसलमान भी नहीं है, मजलूम सुन्नी भी मुसलमान है, मसीही भी मुसलमान है, सिख भी मुसलमान है, मशाल खान जिसको मारा गया वो भी मुसलमान है, पंजाब की भट्टी में जिन ईसाइयों को धकेल दिया गया जिंदे जला दिए गए वो भी मुसलमान है, पेशावर में चढ़ गए धमाके तो वो भी मुसलमान है, हमारे सुन्नी भाई मारे जा रहे हैं वो भी मुसलमान है, वो भी मजलूम है, वो भी मजलूम है। हत्ता के ट्रेड टावर में अमरीका 9/11 में जो 2 ट्रेड टावर थे उनमें जो बेगुनाह अफराद मारे गए वो मजलूम है, उन पर जुल्म हुआ है। मकतब तशयो में एक खासियत है कि वह हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है, लिहाजा वहां जो बेगुनाह यहूदी भी मरा हो
ईसाई भी मरा हो, कोई सिख मरे, कोई काफिर मरे, कोई हिंदू मरे, कोई बुत परस्त मरे, खुदा को न भी मानता हो, इमाम अली ने फार्मूला दिया है खून अल जालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना हसन हुसैन। और जिस जिस मुसलमान और शिया तक मेरी वसीयत पहुंचे, देखो जालिम के दुश्मन बन जाना, मजलूम के हामी बन जाना। अली की निगाह में दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड है, एक का नाम जुल्म है और जालिम है, एक का नाम मजलूमियत है। तो मौला कहते हैं जहां जुल्म नजर आए उसकी मुखालफत करना, जहां मजलूमियत नजर आए उसकी हिमायत करना। ये है तशय्यो, ये है करबला का वो बुनियादी उसूल। तो करबला में तकद्दस है, मानवियत है, और फिर करबला में जो दूसरे अवामिल थे, इंशाल्लाह इन मजालिस में अर्ज करूंगा, आज सिर्फ फहरिस्तवार आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। एक दफा दुरूद का सहारा लूँ ताकि पानी पी सकूँ। अब जितना वक्त हमें मिल सकेगा इन मजालिस में इन नुकात को सिलसिलेवार अर्ज करेंगे, जिसको यहाँ फहरिस्त को उन्होंने से मैंने लिखा है। सबसे पहली चीज जिसने करबला को बाकी रखा वो इरादा व मशीयत खुदा था। इरादा खुदा ये है करबला का, मशीयत इलाही यह है कि करबला खुदा के फैसले के सामने किसी का फैसला नहीं चल सकता। एक दो, करबला के पैगाम में जामियत है, जामियत है। मसलन अर्ज करूं, एक प्रोफेसर आता है, या मैं यूँ कहूँ बल्कि प्रोफेसर नहीं हूँ तो एक थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, आपकी कंपनी में एक नया जनरल मैनेजर आता है जो अखलाक का भी बहुत अच्छा हो, मैनेजमेंट बहुत आती हो, पढ़ा लिखा भी हो, छोटों से बड़ों से गरीबों से अमीरों से सबसे अच्छी तरह कुछ अखलाक से बात करता हो, हर फन मौजा हो दूसरे बार में, अगर हर अंगुल ये फन इबारत कौले पारती हो, हर उंगली से एक फन निकल रहा, हर फन मौला, अब इधर ये अच्छा क्यों? इसमें सारी चीज़ें क्या हैं, जमा हो गई हैं, जामे हो गई हैं। करबला के पैगाम, करबला के पैगाम की मानदगारी और करबला के ता कयामत बाकी रहने का दूसरा उंसर और सबब करबला की जामियत है। कुरान अगर जामे है तो करबला भी जामे है, इस्लाम अगर जामे है तो करबला भी जामे है, विलायत और इमामत का निज़ाम जामे है तो करबला भी जामे है। हो नहीं सकता कि आप एक मामूली चीज़ से, हकीर चीज़ से किसी अजीम चीज़ का दिफा करें। आप बहुत बड़ा अमाउंट या गोल्ड या ज्वेलरी घर में ला के रखते हैं, क्या ऐसी ला के रख देते हैं? लॉक लगाते हैं, ताला लगाते हैं जी, मजबूत ताला जिसे कोई तोड़ ना सके, खोल ना सके, गोल्ड ऐसा। करबला हिफाजत का नाम है इस्लाम की। मामूली चीज़ होती करबला, इस्लाम की हिफाजत नहीं हो सकती थी। जितनी बड़ी कीमती चीज़ होती है उसकी हिफाजत, उसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी तो नहीं ज़्यादा होता। एक डीसी आता है उसके साथ एक पुलिस मोबाइल होती है, आसान जबान में समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ जी, मियाँ आ जाएगा उसके साथ और होगा, गवर्नर आएगा और होगा जी, डीजी रेंजर्स आ जाएंगे उनके साथ कुछ और प्रोटोकॉल होगा, सदर आएंगे कुछ और होगा, आर्मी चीफ आएगा कुछ और होगा। तो जितनी बड़ी चीज़ होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोटेक्ट कर रही है उसको भी उतना ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर ताला आपने मामूली से लगाया है तो एक ही हथौड़े में टूट जाए तो इस ताले लगाने का क्या फायदा हुआ? मजबूत चीज। करबला ने तहफुज किया है, करबला ने, आशूरा ने इस्लाम को बचाया है, लिहाजा अब करबला को तोड़ना, करबला को शिकस्त देना, करबला को नीचे दिखाना, करबला का जवाब लाना, करबला के कद के बराबर अपने कद को ऊंचा करना दुनिया में किसी के लिए मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। अर्ज करूंगा इंशाल्लाह, जामियत है। दो तीन, जो रहबर है करबला का वो इमाम मासूम है, जो हाजी है, जो मैनेजर है, मैनेजमेंट कर रहा है करबला की, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत है। बताएगी तो अर्ज करूंगा इमाम हुसैन की शख्सियत में क्या जाज़िबियत और जज़ाबियत और कशिश मौजूद है, जिसको मौला फरमाते हैं अना कतीउल अबरा
مجھے رولا رولا کے بارا دے رہا ہے.
لا یذکر للمؤمنون الا البقاء. اتنی جذابیت ہے حسین میں, کوئی مومن امام کہتے ہیں میرا تذکرہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کے اندر ایک ریولیشن پیدا ہو جائے گا, انقلاب آ جائے گا, احساسات جذبات موجزن ہو جائیں گے, تحرک و بیداری آئے گی. اور یہ تحرک و بیداری اتنی ہوگی کہ اس کے جذبات جھنجھوڑ دیے جائیں گے, اور جذبات جب جھنجھوڑے جائیں گے تو احساسات بیدار ہو جائیں گے, اور جب احساسات بیدار ہوں گے تو انسان بے خود ہو جائے گا, اور جب بے خود ہو جائے گا انسان تو پھر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے. یہ آنسو کو چھلکنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انشاءاللہ موقع آئے گا تو عرض کروں گا, انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا, کہ یہ آنسو جو رونے رولانے کا حکم دیا گیا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بوڑھی عورتوں کے ساتھ رونے کا کام نہیں ہے, تشیع کا کام, کہ ہم بیٹھ کے امام حسین کو بقول علی شریعتی کے کہ یہ جو رونا ہم نے دین بنا لیا ہے کہ رونا ہے, رو کے چلے جاؤ, ہاتھ جوڑو جی, کپڑے جھاڑو, چل دو, ختم, ثواب مل گیا تمہیں. یعنی بقول ایک عالم دین کے کہ امام حسین تمہیں ثواب دلانا چاہتے تھے, اپنے علی اکبر قربان کر دی تم ثواب کو, بس زینب کی چادر دے دی تم ثواب, میں اور آپ ثواب لیں بس. علی اصغر کی شہادت اس طریقے سے, کس لیے ثواب لوں بس, اتنی عظیم شخصیات. اصل جن کے لیے آئے تطہیر ہوتی سید زادی کے سر سے چادر چھینی جائیں, کس لیے, میں ثواب لوں بس. جب واقعی یہی ہے کربلا, اس گریے کے پیچھے ایک فلسفہ ہے, یہ در حقیقت حیات کا ایک ایسا درس ہے گریہ امام حسین پر, کہ جو آپ کو دنیا کے تمام مظلوموں سے ملاتا ہوا, کہ جس میں سر فہرست کربلا ہے, آپ کا رابطہ اور رشتہ خدا سے مضبوط و مستحکم کر دیتا. ایسا نہیں کسی کو روئیں بوڑھی اور تو اور جی آنکھوں صاف کرو چلے گئے, نہیں. کس لیے ہے, ایک ایک فلسفہ, ایک فلسفی ہے اس کی, انشاءاللہ اگر موقع ملا تو عرض کروں گا, چونکہ ابھی میں صرف فہرست پر عرض کروں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. رہبریت امام معصوم کے پاس ہے, امام حسین, امام ہی نہیں امام حسین, کیا جاذبیت ہے, وہ انشاءاللہ عرض کروں گا. دوسرا, امام کے اصحاب کی مانند امام کی ٹیم ورک جو تھی آسان الفاظ میں آج کے بچوں کی زبان, ایک مینیجر ہوتا ہے اس کی ٹیم ورک ہوتی ہے, اس کی جو ٹیم اگر وہ پاورفل نہ ہو اکیلا مینیجر کچھ نہیں کر سکتا. صدر پاکستان کی ٹیم نہ ہو, وزیر اعظم کی کابینہ ہو, جنرل باجوہ کی مثلا چیف آف دی آرمی صاحب کی ٹیم نہ ہو, وہ کچھ نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ ٹیم ایسی ہونی چاہیے مضبوط جو اپنے باس کو دیکھے, اپنے جنرل کو دیکھے, اپنے ہادی کو دیکھے اور کاموں کو مضبوط کرے. امام حسین کے ساتھ جو کربلا کی بقا کا ایک عنصر اور ایک فیکٹر ہے وہ کیا ہے, امام حسین کی ٹیم, امام حسین کے اصحاب. اس کے لیے امام حسین نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے, نہ نانا رسول کو ملے, نہ بابا علی کو ملے, نہ بھائی حسن کو ملے. اب ان کے پیچھے ایک فرض بھی ہے, ایسا نہیں کہ امام حسین نہ رسول سے پڑھ دے نہیں. اس کے بعد پیغام رسان کربلا, پیام بران کربلا, جنہوں نے کربلا کو باقی رکھا, جنہوں نے کربلا کو پہنچایا, جنہوں نے ایٹ دا اسپاٹ اقدام کیا, بر وقت فیصلے کیے, ان کی ذہانت و ذکاوت و ہوش مندی اور عقل مندی اعلیٰ درجے کی. جناب زینب اور حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. مل کے درود بھیجے محمد والا. پھر ایک اور نقطہ جو کربلا کو باقی رکھنے میں مؤثر ہے وہ ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تاکید و سفارش. کربلا باقی رکھو, کربلا باقی رکھو, ماتم کرو, ایک آنسو بہاؤ گے اس کا یہ ثواب, یہ عظمت ہے, فرشادہ بچھاؤ گے تو یہ ہے, دنیا میں یہ اجر ہے, آخر میں یہ اجر ہے, تصور نہیں کر سکتے. اہل بیت میں اتنا ثواب ہے انسان دم رہ جاتا ہے, اتنی تاکید کیوں ہے, اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ عرض کروں گا انشاءاللہ. پھر ساتواں نقطہ وہی والی بات جو
कदालिक यदरबल्लाहुल हक्क वल बातिल, खुदा इन मिसालों के जरिए से हक व बातिल तुम्हें दिखाना चाह रहा है कि एक पानी होता है, पानी के ऊपर थोड़ी देर के लिए झाग आ जाता है, झाग बहुत ज़्यादा होता है तो मरूब हो जाता है, थोड़ी देर में झाग खत्म होकर चला जाता है, फना हो जाता है, और जो चीज़ लोगों के फ़ायदे के लिए रहती है वो बाकी रहती है। ये हक बातिल की जंग थी जिसने आज तक करबला को बाकी रखा है। जाल हक वज़हब अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आ गया बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल मिटने और नाबूद होने के लिए है, असल दवाम नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं है, वो बाकी नहीं रहने वाला, चंद दिन हाँ बाकी रहेगा, जोर दिखाएगा, शोर करेगा, वजूद को जाहिर करेगा, एक्सपोज करेगा अपने आप को हर तरीके से जो कुछ भी उसके पास है, जैसे कि आज दुनिया में बड़ी ताकतें कर रही हैं दुनिया को मरूब करने के लिए। खूब जो अली वाले होते हैं वो इन ताकतों से मरूब नहीं होते, पहले तो ड्रोन को उतार के दिखा देते कि इतनी ताकत है, और जब दुश्मन बाज नहीं आता तो 200 मिलियन के ड्रोन को मार के दिखा देते हैं कि अगर आप भी होश के नाखून ना लिए तो इससे बड़ा इकदाम करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो जो रखिएगा, तो हक बातिल की जंग ये है एक, और दूसरा ये कि जुल्म और मजलूमियत का मुकाबला था, और इसमें बहुत गुंजाइश है गुफ्तगू की, बहुत गुंजाइश है वो, ये जो हम कहते हैं ना मजहब के साथ, चूँकि आपके तकरीबन हर घर में किसी न किसी, तकरीबन हर घर में किसी न किसी शहीद का जनाजा उठा होगा, ये जो हम कहते हैं हम मजलूम करबला के मानने वाले हैं, हमें तो शहादत देनी है, नहीं, ये नज़रिया इस जहत से कि हम मरते रहेंगे, पिटते रहेंगे, कटते रहेंगे, चूँकि हम मजलूम करबला के मानने वाले नहीं, इमाम हुसैन ने इसलिए करबला नहीं बनाई थी कि आप मजलूम रहे, आप कत्ल होते रहे, आप शहीद होते रहे, आप लाशें उठाते रहे, यहाँ पर आपकी कौमियात के, आपकी समाजियात की तंजीम को सोचना होगा, जमा होना होगा, आपके उलमा को, आपके अकाबरीन को, आपके इंटेलेक्चुअल्स को, आपके स्कॉलर्स को, सबको जमा होना होगा कि हम इस अशबार वजीयत से, असबार वजीयत से निकलें, ना ये कहें कि हम मजलूम करबला के मानने वाले हैं लिहाजा हम तो पिटते रहेंगे और जनाजा उठाते रहेंगे, नहीं, इस जिहत से करबला के अगर आप तशरीह कर रहे हैं तो न सिर्फ कि आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं बल्कि करबला पर भी तोहमत लगा रहे हैं, करबला के पैगाम में आफाकी को भी दर हकीकत जक और नुकसान पहुँचा रहे हैं। इंशाल्लाह गुफ्तगू आएगी तो अर्ज करूँगा करबला क्यों बाकी है, और आप ये नुकता अर्ज करूँ वही के बराबर का मुकाबला था, जुल्म और मजलूमियत की जंग थी, बज़ाहिर इस जंग में जुल्म कामयाब होता है, फतह जुल्म की होती है, गालिब जुल्म होता है, मजलूमियत महकूम होती है, मजलूमियत कत्ल होती है, मजलूमियत पामाल होती है, मजलूमियत के गले पे छुरी फेरी जाती है, मजलूमों के सरों को नोके नज़र उठाया जाता है। बस यही से मैंने मसाइल कहा, मजलूमियत के सर, मजलूमों के सर को नोके नज़र, मजलूमों के हाथों में हथकड़ियां बेरियां डाली जाती हैं, मजलूमों के हाथों को पसे गर्दन बांधा जाता है, मजलूमों को तमाचे मजलूमों को कैद में डाला जाता है, लेकिन यही मजलूमियत जो है, यही दर्द और यही आह जो है वो करबला की बका की सवाल है। इस मजलूमियत को समझना होगा, ये मजलूमियत हमारा हमारे सर का ताज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा मरते रहें, लाश उठाते रहें, खौफ खतर की फिजा में जिंदगी गुजारें, बंद गलियों में जिंदगी गुजारें, नहीं, ये मजलूमियत ये नहीं है। हमारे कारोबार खत्म हो जाएं, हमारी इज्जत तौकीर खत्म हो जाए, हम डर डर के गली के दाएं और बाएं झांक कर निकलें और देखें कोई मारने वाला तो नहीं, सुबह निकलें और वापस आने की कोई उम्मीद ना हो, मजलूमियत ये नहीं है दादाओं। हमें सोचना होगा, जमा होना होगा, और करबला के आफाकी पैगाम से दर्द से हयात लेना होगा। जिंदगी सिर्फ ये नहीं है कि मेरे और आपकी सांस चल रही है, दो वक्त की रोटी खा रहे हैं, ठंडे एसी के नीचे बैठे हुए हैं,
जिंदगी ये नहीं, ये तो जिंदगी तो उम्र के पास बहुत थी। जिंदगी वो है कि तुम्हारे पास मजलूमियत हो, तुम्हारे पास मानवियत हो, तुम्हारे पास करबला हो, तुम्हारे पास निजाम विलायत हो, इमामत हो, ये है जिंदगी। खा दुनिया भी नेमतों को तुम सर पे नजर करके ठोकर मार के आ जाओ हो की तरह, लेकिन तुम्हें हुसैन मिल जाए, तुम्हें हुसैन का आब हयात मिल जाए। मिलकर दूर भेजे मोहम्मद वाले। गुजारिश करूँ कि कल से अगर आप थोड़ा सा जल्दी तशरीफ ले आए तो हम ठीक 10 बजे अपनी गुफ्तगू को आगाज करें, ताकि जो है वो मजीद दाखिल ना हो। अजा 11 मुहर्रम आ गई, करबला का एक रुख खत्म हुआ, करबला का दूसरा रुख शुरू हो गया। करबला की जंग रुकी नहीं है, करबला की जंग खत्म नहीं हुई है। करबला की जंग इमाम ज़मान आकर इख्तिताम करेंगे। हाँ, फेज चेंज हुआ है, अंदाज चेंज हुआ है, कमांड किसी और को दी गई है। अजय ने कहा बस आज अशरे ज़ैनबिया का पहला दिन है, आज योम ज़ैनब की असमत को खराज अकीदत और सलाम अकीदत पेश कर दिया गया। क्यों कहते हैं यार मुहर्रम को ज़ैनब? इसलिए कि इस करबला कि जिसकी महार इमाम सज्जाद के पास थी, इमाम सज्जाद एक मसलहत के तहत एक आरजी बीमारी में मुब्तला थे, इसके वजह से इस कारवां की सालार आयात हक की छांव में इस मद कबूल थी। ज़ैनब कहीं अली थी, कहीं पर रसूल थी, कहीं अब्बास थी, कहीं अली अकबर थी। तसव्वुर करें, सलाम मेरा उस इमाम पर कि जिसकी इमामत की पहले दिन की शाम शाम हो। इमाम की पहली शाम शाम वलीबा, अल्लाह अकबर। वो शाम भी कैसी शाम थी कि खयाम जल चुके थे, अल्लाह अकबर। कई बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आके शहीद हो गए थे। बीवियां जब आखिरी खेमे से बाहर निकली हैं तो सादात की मुखद्दरात इस्मत और तहारत के सरों से नेजे की अन्नियों से चादरें छीनी गई हैं। चादर नहीं छीनी सिर्फ, अरे सर भी जख्मी हुए हैं सादात के हवाली से। ये है शाम वलीबा, और ऐसे आलम में जनाब ज़ैनब आगे आगे। जनाब ज़ैनब के मसाइल बड़े अजीब हैं, अज़ादारों बहुत अजीब हैं, ऐसे अजीब है कि मैं कहता हूँ कदम कदम पे खुदा ने जनाब ज़ैनब को तैयार किया है। ज़ैनब तेरा दिल पुख्ता हो जाए, कुंदन हो जाए, मजबूत हो जाए करबला के लिए। अज़ादारों किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा था, मौला सज्जाद ये बताइए, और ये बास वाकत और अपा ने जिक्र किए हैं करबला की मानवियत और रूहानियत के लिहाज से, कि जब बीवियों को सवार करने के लिए ऊँटों को लाया गया था तो ऊँटों में खुलबली मची थी। मामूलन ये परेशानी ऊँटों में नहीं होती है, लेकिन ऊँटों में गैर मामूली परेशानी का मुशाहिदा किया गया। किसी ने इमाम से पूछा यमना रसूलुल्लाह बताइए ये ऊँट परेशान क्यों थे उस वक्त? पता है इमाम ने कहा पता है तुम्हें, बड़े ऊँटों ने छोटे ऊँटों को जमा किया और कहा देखो हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर आले रसूल को सवार किया जाएगा। अरे महमले नहीं हैं, उनमें बूढ़े भी हैं, उनमें बच्चे भी हैं, उनमें बीमार करबला भी हैं। अरे ताजियाने खा लेना, मगर आले रसूल को कोई नुकसान यह है करबला। और फिर उलमा ने बयान किया है इमाम ने अपनी तलवार से जो कब्र अजहर खोदी थी ना, तो ये तलवार गिरिया कर रही थी, कहा कर रही थी मौला मेरा काम तो जंग करना है, क्या जंग करने वाले हथियारों से, अरे 6 माह के बच्चे की खबर भी खोदी जाएगी। बस अदारों में आगे जाऊँ मैं ज़ैनब पर, ज़ैनब को खुदा ने तैयार किया है। अदारों कहाँ से शुरू करूँ?
मदीने से शुरू करता हूँ। छोटी बच्ची है जो देख रही है, अरे कुछ लोग आए हैं दरवाजे पर, दरवाजा खोलो, दरवाजा गिरा देंगे। दरवाजे को गिराया गया, दरवाजे को आग लगाई गई है। एक दफा दनदनाते हुए अंदर आ गए। मैं कहूँ ज़ैनब, ये मदीने में दरे ज़हरा को आग नहीं लगी, अरे ये करबला की तैयारी है। आज माँ के दरवाजे को आग लग रही है, अरे कल खयाम में आग लगाई जा रही। अजो कमर अल्लाह, आजदारो खोल के रोया करो, रोने में खजालत महसूस न करना। अरे इन्हीं सदाओं पर तो अहले बैत के बच्चों को ताजियाने मारे जाते थे, तमाचे मारे जाते थे, कोई हाय हुसैन नहीं कह सकता था। आज तुम्हें सितम तुम पर सितम करने वाला नहीं है तो दिल खोल के कहो हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। अरे ये आरजू है असीरा ने करबला की, ये दिली तमन्ना है असीरा ने करबला की। अजादारो उसके बाद मैं कहूँ जब ज़ैनब ने बाबा का जख्मी सर देखा, माला को बैत शरफ लाया गया, माला ने कहा तो दूर हो जाए, रात की तारीखी तो कोई करीब ना आए। किसी ने पूछा मौला जी क्यों, कहा कि ऐसा ना हो ज़ैनब उम्मे कुलसूम के रोने की आवाजें पट्टी बंधी हुई है, नकाहत के आसार अली के चेहरे से है, अल्लाह अकबर। अरे जनाब ज़ैनब ने देखा, गिरिया करना शुरू किया, बेटी का गिरिया बाप से बर्दाश्त ना हुआ। अरे अली ने गिरिया करना शुरू कर दिया, मैं हाथ जोड़ के बीबी ये कूफा में शबे 19 बाबा का जख्मी सर नहीं है, अरे ये तैयारी है करबला की। अरे कल चिल्लाए ज़ैनब यहाँ से बहन देखेगी 70 कदम के फासले पर शिविर कुंद खंजर के बाद। आज रुको अल्लाह, आज बाबा का जख्मी सर देखा बीबी, अरे कल नो के नेजा पर। जब इमाम की शहादत हो गई ना, एक दफा सुर्ख आंधियां चली, जलजला आया, बीबी चले ज़ैनब से दौड़ कर एक दफा खेमा इमाम सज्जाद पे आई, बेटा ये कैसी आंधियां हैं। इमाम सज्जाद ने कहा पप्पी अम्मा जरा खेमे का पर्दा हटाइए। जब पर्दा हटाया बेटा खड़ा होना चाहता है, उठ नहीं सका, अस्सलाम वालेकुम या बाबा, मजलूम बाबा मजलूम बेटे का सलाम ले लो। जनाब ज़ैनब परेशान हो गई, बेटा मुझे भाई नजर नहीं आता। इमाम सज्जाद ने कहा पप्पी अम्मा अब बाबा की ज़ियारत ज़मीन पे नहीं नोक नेज़ा पे होगी। अज़रकुम अल्लाह, खुदा तुम्हारी नमाज व रहमत नाज़िल करे, तुम्हारे नाम ज़ुरूर कसीर करे, रमादान ज़हरा में जगह पाए। अज़ादारो और जब मदीने में 50 हिजरी में 28 सफर को हसर की हालत में हुई, तो एक दफा इमाम ने कहा ज़ैनब जरा एक तश्त तो ले आओ। अल्लाह अकबर, अज़ादारो बस तश्त लाया गया, खून की उल्टी हुई, अरे कलेजे के टुकड़े गिरने लगे। मैं कहूँ बहन ज़ैनब, अरे ये मदीना नहीं है, करबला की तैयारी है। अरे मदीने में कलेजे हसन के टुकड़े, अरे करबला में एक कासिम बिन हसन की लाश के टुकड़े। अल्लाह मुझे एक दो रिवायत पढ़ दो अल्लाह, ताकि दिल खोल करो, सुबह पूरा हो गया, माजरा चाहता हूँ। ये बहन बड़ी अजीब बहन है, इसकी मोहब्बत हुसैन से बड़ी अजीब है। अल्लाह ज़ैनब ने अपने बच्चे फरमान कर दिए, मगर गिरिया नहीं किया। जब एक दफ़ा शाम का जिंदा का दरवाज़ा खुला और एक रिवायत के मुताबिक सर दिए जाने लगे, तो हर बीवी आती थी अपने शहीद का सर उठा देती थी। ये है ज़ैनब दौरा का जिहाद। आज जो मैं ज़ैनब है ना, अरे दिल खोल कर अली मुंतज़ा को पुरसा दो, अरे आज पुरसा दो हसन को, आज पुरसा दो मौला हुसैन को, आज पुरसा दो अबुल फज़ल अब्बास को। अल्लाह ज़ैनब को अब्बास एक मुकाम पे बहुत याद आए थे। अच्छा दारू वो कौन सा मुकाम है कि जब एक दफा بیویوں کو 11 محرم کو سوار کر دیا. اب بیوی تنے تنہا رہ گئی. ایک دفعہ فرات کی طرف رخ کیا, بھیا عباس بڑی شان سے بہن کو سوار کیا تھا. ارے بہن سوار ہونا چاہتی ہے, آ جا مجھے سوار کرے بھیا. بس کر سر ملے نا تو کسی نے دیکھا کھانے میں دو سر رکھے ہوئے ہیں. بس دو روایت درج کروں گا, مسائل تمام ہو گیا اور ہر پرسا قبول ہو گیا. ان سروں کو لینے والا کوئی نہیں تھا. کسی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک دفعہ بیوی کو چلائے, خبردار میں ان بچوں کی ماں ہوں, میں حسین کی بہن ہوں. ارے بچے حسین پر نثار کر دیے. میں گریہ نہیں کروں گی. زینب نے گریہ نہیں کیا, کہیں مادر سکینہ کا دل نہ ٹوٹ جائے, کہیں مادر علی ادنا دل کا دل نہ ٹوٹ جائے, کہیں ام فروہ کا دل نہ ٹوٹ جائے. زینب نے گریہ نہیں کیا. جب مدینہ بس آخری روایت, جب مدینہ واپس آ گئی نا اپنے گھر میں داخل ہوئی, ایک دفعہ سر سے چادر اتار دی. عبداللہ گھر میں داخل ہوئے, دیکھا کوئی ضعیفہ بیٹھی ہے سفید بالوں والی. پیچھے چلے گئے, کہا کہ آپ کون ہے؟ آپ کسی اور کے گھر میں آ گئی ہیں. کہا کہ عبداللہ ارے اپنی زوجہ کو نہیں پہچانا. ہاں تمہیں حق ہے, ارے تم نے میرے سر کے سفید بال دیکھے ہیں. ارے جس کا پاس مارا جائے, جس کا اکبر چھین لیا جائے, جس کے بچے قتل کر دیے جائیں, ارے جس کے حسین کو پسے گردن سے سروے لگا کے سر کو کاٹا جائے, ارے جن کے سر سے چادر چھین لی جائے, ارے ان کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں. عبداللہ کیا بتاؤں, ارے شرابی کا مجمع تھا, آل رسول بے پردہ اور یزید سر حسین سے کھیل رہا تھا. بس اللہ دارو جب یہ مسائل ہو گئے, بی بی کہاں گئی؟ بی بی اس حجرے میں گئی کہ جہاں پر اون محمد کے مسلے رکھے تھے. ایک دفعہ مسلوں کو اٹھایا, ایک دفعہ صبر کا دامہ چھوٹا, گریا کرنا شروع کیا. کبھی چمتی ہے مسلے کو, کبھی سونگتی ہے, کبھی آنکھوں سے لگاتی ہے. اے میرے اون محمد, ارے ماں کو معاف کر دینا, ارے کربلا کے راستے میں نہ روئی مگر ہاں ماں ہوں تمہاری.